मेरे युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी नौजवान साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सच पूछिए तो उनके साहस, उनके जज्बे का अभिनंदन करना चाहूँगा जो इतनी धूप के बावजूद, कड़कड़ाती हुई, चमचमाती हुई गर्मी के बावजूद बिलासपुर में मेरा व्याख्यान सुनने को आए और लगातार 3.5 घंटे तक बिल्कुल ध्यानस्थ मुद्रा में उन्होंने व्याख्यान में भाग लिया। और स्पेशली मैं उस घटना को नहीं भूल सकता जब बीच में 5 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, बिल्कुल अंधेरा छा गया था, लेकिन मैं ऊंची आवाज में लगातार बोलता रहा और पूरे के पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकली कि लाइट जल्दी लाओ, पिन ड्रॉप साइलेंस। और बल्कि वहां जो नौजवान मौजूद थे उन्होंने अपने मोबाइल जला जला करके थोड़ी सी रोशनी भरने की कोशिश की। 5 मिनट तक लगभग यह वातावरण बना रहा। तो मुझे लगता है कि यह उनके अंदर जो एक इच्छा है कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की, उसका एक बहुत ही खूबसूरत प्रमाण था। और यह प्रमाण जिन स्टूडेंट्स ने वहां मौजूद होकर दिया है उनके लिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और सच पूछे तो ईश्वर से प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि आपके अंदर जो इतनी प्रबल इच्छा शक्ति है वह न केवल बनी ही रहे बल्कि दिन प्रतिदिन और भी प्रबल होती जाए। तो दोस्तों, इस छोटे से अभिव्यक्ति के बाद जो मुख्य विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा वह है आयुष क्षेत्र को लेकर। लेकिन पहले जो दूसरी खबरें हैं आइए उन्हें देख लेते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा INS वागशीर के बारे में। INS वागशीर, INS जो हमारी नौसेना है वो INS के तहत जो स्कॉर्पिन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां बना रही है उसमें ये जो वागशीर है ये अंतिम पनडुब्बी है। इससे पहले की जो पनडुब्बियां हैं उनके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं और जानबूझकर मैं उन 5 पनडुब्बियों के नाम नहीं बता रहा हूं। यह होमवर्क मैं आप लोगों को सौंप रहा हूं। आप देखें कि स्कॉर्पिन श्रेणी के तहत जो इससे पहले 5 पनडुब्बियां बनाई जा चुकी हैं उनके नाम क्या हैं। एक बार उनके नाम आपको जान लेने चाहिए। इसका कल शुभारंभ किया गया है और इसका जो नाम है वागशीर है ना, थोड़ा सा नया सा नाम है। कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं। तो हिंद महासागर जो है उसके गहरे समुद्र में एक सैंड फिश पाई जाती है, सैंड फिश, उसका नाम है वागशीर। तो उसी के नाम पर इस पनडुब्बी का नामकरण किया गया है। फ्रेंड्स, इससे पहले की जो एक दो खबरें हैं जो लगभग लगभग छूट गई थी लेकिन मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए, वो एक तो ये है कि जो मनोज पांडे हैं वो हमारे अब नए थल अध्यक्ष होंगे, थल सेना के अध्यक्ष होंगे मनोज पांडे। देखिए, आप कह सकते हैं कि सर इससे पहले भी अध्यक्ष बनते रहे लेकिन आपने उनकी चर्चा नहीं की तो इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है। रीजन ये है कि मनोज पांडे वे हमारे पहले थल सेना अध्यक्ष होंगे जो कोर ऑफ इंजीनियर्स से आए हुए हैं। इससे पहले जो हमारे जितने भी थल सेना अध्यक्ष होते रहे हैं वे या तो इन्फेंट्री से रहे हैं या आर्म फोर्स से रहे हैं या आर्टिलरी से रहे हैं या सीधे सीधे कह लीजिए कि जो सेना से ही जुड़े हुए थे, जो युद्ध से सीधे जुड़े हुए थे, ये इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं। तो पहले ऐसे थल सेना अध्यक्ष ये बनेंगे मनोज पांडे। इसीलिए मैंने इनकी चर्चा मैंने विशेष रूप से की है क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये देखा गया है, खासकर प्री एग्जामिनेशन में, कि जब तक कोई विशिष्ट बात न हो तो सामान्य तथ्यों को अब वो पूछते नहीं है। और थल सेना अध्यक्ष बन जाना या वायु सेना अध्यक्ष बन जाना अब वो एक सामान्य तरह की खबरों के तहत ही UPSC उन्हें काउंट करने लगा है। एक खबर कल की है जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। इनफैक्ट ये खबर नहीं है बल्कि एक आर्टिकल में ये तथ्य मुझे मिले हैं और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से मुझे ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है और वह है रेलवे में कार्बन इमिशन को लेकर। जो हमारी जो अभी भी 37% जो ट्रेन्स हैं वो डीजल से चल रही हैं और आप जानते हैं कि डीजल से चलने के कारण वो कितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं। अब धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि वो बायो डीजल का उपयोग करें। 2023 तक का हमने प्लान किया हुआ है भारतीय रेल ने कि उसके 70% जो रेलवे लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगी, यानी कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। और 2030 तक, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2030 तक जो हमारी रेलवे है वो कार्बन का उत्सर्जन 0% कर देगी, या यूं कह लीजिए कि हमारी जो रेलवे है वो पूरी तरह से हरित रेलवे बन जाएगी। मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी सी आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि देखिए किस तरह से हरित ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के बारे में लगातार खबरें आ रही हैं, पूरी दुनिया इस कोशिश में लगी हुई है। कार्बन उत्सर्जन को लेकर के जो रिपोर्ट्स भी हमें पढ़ने को मिलती हैं भविष्य का बहुत ही भयावह दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, और भारत इसमें अभी एक तरीके से पायोनियर के रूप में आगे चल रहा है। भारत लगातार अपने वायदे निभा रहा है, वायदे कर भी रहा है, और इस कोशिश में है कि कैसे हम धीरे 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 कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आज आपको मैंने एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया है दैनिक भास्कर का, कंज्यूमर गुड्स की मांग को लेकर। मैं चाहूंगा कि इस आर्टिकल को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। जी हां, बहुत ध्यान से पढ़ें, तभी आप इसके साथ न्याय कर सकेंगे, अदरवाइज न्याय नहीं कर सकेंगे। कंज्यूमर गुड्स, पहली बात तो यह कि आपको मालूम होना चाहिए कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, ठीक है। महंगाई अभी क्यों बढ़ रही है उसके संदर्भ में ये एडिटोरियल कमेंट्स है। कंज्यूमर गुड्स यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं, हम सीधे सीधे उनका उपभोग करते हैं। जैसे आप एसी ले लीजिए, ये कोई उपभोक्ता वस्तु नहीं है, है ना। अभी ये देखने में आया है कि धीरे धीरे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंज्यूमर गुड्स की मांग बहुत कम हो गई है। इसका मतलब है कि लोग महंगाई से त्रस्त हैं, और जब कंज्यूमर गुड्स की मांग कम होती है, स्पेशली मैं इस लाइन को अंडरलाइन करने जा रहा हूं, और इसीलिए मैंने ये एडिटोरियल कमेंट्स आपको प्रोवाइड भी किया है, कि तब जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं वो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बने हुए माल को कुछ समय तक रोक सकें, क्योंकि अगर वो रोक लेंगे तो उनकी लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, उनकी तरलता खत्म हो जाएगी, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन ये छोटे जो उद्योग हैं ये नहीं कर सकते। ऐसे में स्थिति ये होगी कि उन्हें अपना उद्योग बंद करना पड़ेगा और फिर से बेरोजगारी के चक्र में हम फंस सकते हैं। तो इस लिहाज से आप इस एडिटोरियल कमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स की समझ के लिए मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, आयुष क्षेत्र। आपको मालूम है कि बकायदे गांधीनगर में हमारा ग्लोबल आयुष एंड इनोवेशन सम्मेलन शुरू हो गया है, अखबारों में आज इसके बारे में चर्चा है। कल भी आयुष क्षेत्र के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा आपसे की थी कि किस तरह से जामनगर में इसका एक वैश्विक केंद्र स्थापित किया गया, जहां ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन चिकित्सा पद्धति को मिलाने की कोशिश होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अब ये जो आयुष क्षेत्र है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, और खासकर अभी जो सम्मेलन किया जा रहा है इसका मुख्य पर्पज़ यही है कि इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाए। जब हम निवेश बढ़ाने की बात करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की हम बात करते हैं। आज के एक अखबार में बकायदे डेटा भी दिया हुआ है कि 2014 में जो आयुष का क्षेत्र था इसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का निवेश था, 23,000 करोड़ रुपए का निवेश था, जो अब बढ़कर 1.38 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो गया है। तो ये शो कर रहा है कि किस तरीके से इस क्षेत्र में लगातार चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। एक दूसरा डेटा और भी है कि इस क्षेत्र में लगातार 17% की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। जो 17% की ग्रोथ होती है वो बहुत होती है। तो इस तरह से जो आयुष का क्षेत्र है वो लगातार विकसित होता चला जा रहा है, मजबूत होता चला जा रहा है। और इसके बारे में अगर आपने रेडियो न्यूज़ सुनी हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। पहली घोषणा है कि आयुष वीजा दिया जाएगा, आयुष वीजा, ये वीजा की एक नई श्रेणी होगी। टूरिस्ट वीजा तो आपने सुना है कि अगर आप भारत घूमने आ रहे हैं तो आपको टूरिस्ट वीजा जल्दी से मिल जाएगा, ज्यादातर दुनिया के देश टूरिस्ट वीजा देते हैं। आयुष वीजा का मतलब है कि अगर कोई इलाज कराने के लिए भारत में आ रहा है तो उसे एक अलग श्रेणी का वीजा दिया जाएगा, जो फर्स्ट उनको तुरंत मिल जाएगा, जल्दी से मिल जाएगा और इलाज कराने के लिए वो भारत आ जाएंगे। इसके बारे में आपको ध्यान होगा कि कल मैंने थोड़ी सी चर्चा भी की थी। इसके साथ ही साथ बकायदे एक परिषद की स्थापना की जाएगी, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद, यानी कि आयुष के तहत जो भी उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे, उनके निर्यात में किस तरीके से वृद्धि की जाए, ये काउंसिल उसे देखेगी। आयुष के क्या उत्पाद हो सकते हैं? मेडिसिन हो सकती हैं, होंगी ही, सप्लीमेंट हो सकते हैं। सप्लीमेंट का मतलब है कि स्वास्थ्यवर्धक चीजें, है ना, कि कोई विटामिन की कमी है तो उसे खा लेने से विटामिन की पूर्ति हो जाएगी, इस तरह की दवाओं को हम कहते हैं सप्लीमेंट। और कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें भी इसी के तहत आती हैं। तो इनका निर्यात बढ़ाने के लिए बकायदे एक परिषद की भी स्थापना की बात कही गई है। यहां मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए वो ये है कि जब हम आयुष की बात करते हैं, ये छह जो इसके अंदर इलाज पद्धतियां हैं भारतीय, वो छह इलाज पद्धतियां कौन सी हैं, ये आपको बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। आयुर्वेद के बारे में आप जानते हैं, योग के बारे में भी आप जानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बारे में भी आप जानते हैं, होम्योपैथ के बारे में भी आप जरूर सुना होगा। दो और रह जाते हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति और सिद्ध चिकित्सा पद्धति। जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है वो काफी कुछ आयुर्वेद से मिलती जुलती ही है, उसमें भी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है और काफी कुछ उसमें थोड़ी सी जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है उसकी भी बातें आ जाती हैं। लेकिन शायद सिद्ध चिकित्सा पद्धति के बारे में आपने नहीं सुना हो, और अगर नहीं सुना होगा तो आप दिमाग में कुछ इस तरह का इंप्रेशन लेके आएंगे, इसमें झाड़ फूंक वगैरह की जो पद्धतियां होती हैं, जो साधु संत महात्मा करते हैं, वो पद्धति आती है। नहीं, जो सिद्ध पद्धति है इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। ये बेसिकली साउथ की चिकित्सा पद्धति है, तमिलनाडु से ये शुरू हुई, तमिलनाडु और केरल में अब इसका काफी उपयोग किया जा रहा है। आयुर्वेद जैसी ही ये पद्धति है, लेकिन ये साउथ में हुई है, और ये माना जाता है कि जो अगस्त ऋषि हुए हैं वो इसके संस्थापक थे। आयुर्वेद की पद्धति से ही ये काम करता है, लेकिन ये साउथ की पद्धति है और काफ़ी इफेक्टिव है, वहाँ अभी भी काफ़ी काम इस पर होता है। और बकायदे केरल में जो टूरिज्म बढ़ा है, मेडिकल टूरिज्म, उसमें सिद्ध चिकित्सा पद्धति का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारी ये जो छह पद्धतियाँ हैं इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बातें जान लेनी चाहिए। यही मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि आज मैं आपको एक एडिटोरियल आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड का। उस आर्टिकल का शीर्षक है, बेहतर विपणन से पनपेगा औषधीय पौधों का कारोबार। देखिए, औषधीय पौधों का कारोबार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत में हमारे जो किसान हैं उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए उससे भी संबंधित है, निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, आयुष पद्धति को कैसे और मजबूत बनाया जाए, इन सब से सीधे संबंधित है। तो प्लीज इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे आप उन्हें नोट भी कर लें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, कुसुम जोशी आसन राजस्थान से और सोनल वानखड़े पुणे से, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।